मासा की ओर देखते हुए अभिनव चुपचाप खड़ा रहा। मासा ने उसे देखकर कहा, लड़के, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम राजवंश राजपरिवार के नहीं हो। सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अर्पिता नरेंद्र की ओर बड़ी हैरानी से देख रही थी। तभी पल्लवी आई और मासा की ओर देखते हुए बोली, बस करिए भाभी सा, आपने हम सबको अपने इशारों पर नचाया, लेकिन अब नहीं, अब कोई आपके हुक्म नहीं मानेगा। अपनी ये आदत बदल लीजिए, क्योंकि अब आप राजमाता नहीं हैं। मैं इस घर की राजमाता बनूंगी। मेरे बेटे का होगा राजाभिषेक। अपना ये रुआब और दो कौड़ी का एटीट्यूड अपने पास रखिए। अब आपकी इस महल में कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक विधवा की तरह रहना सीख लीजिए। पल्लवी की बात सुनते ही अर्पिता गुस्से से चिल्लाई, चाची सा, अपनी जुबान पर अंकुश लगाइए। आप हमारी मासा से इस तरह बात नहीं कर सकती। अर्पिता इतना ही बोल पाई थी कि समर्थ वहां आ गया। वो शायद पहले से ही सब जानता था। अभिनव को देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। वो चुपचाप मासा के पीछे आकर खड़ा हो गया। फिर अर्पिता पल्लवी की ओर देखकर तेज आवाज में चिल्लाई, आपने हमारी मासा के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप हमारी मासा से माफी मांगे। पल्लवी ने अर्पिता को घूरते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। इस घर की बेटी हो, अपनी औकात मत भूलो। तुम्हें राजवंश राजपरिवार में क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं है। तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम अपने मायके के मामलों में ना बोलो तो अच्छा होगा। अर्पिता ने कहा, हाँ, हमारी शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी मासा को कुछ भी कहेंगे और हम चुप रहेंगे। हरगिज नहीं। चाची सा, ये मत भूलिए कि ये घर जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। हम इस घर की बेटी हैं और घर के हर मामले में बोल सकती हैं। पल्लवी उसे घूर रही थी। तभी नरेंद्र आगे आया और अर्पिता को घूरते हुए बोला, नहीं अर्पिता, तुम इस घर की बेटी हो, ये बात सही है, लेकिन इस तरह से तुम यहाँ के मामलों में बोलोगी ये सही नहीं है, और तुम्हें अब कुछ भी बोलने का हक नहीं है। जो लड़की अपना ससुराल छोड़कर पिछले 5 महीने से अपने मायके में पड़ी है, उसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया है। अपना मुंह और जबान बंद रखो। अगर हमने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा तो तुम्हारे पास मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं होगी। तुम्हारे ससुराल वालों ने तो तुम्हें तुम्हारे ससुराल से पूरी तरह निकाल ही दिया है। अर्पिता उदास हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। समर्थ ने कहा, आप लोग इस तरह से अर्पिता से बात नहीं कर सकते। यहाँ राजमहल की बात हो रही है तो अर्पिता की पर्सनल लाइफ को लाने की क्या जरूरत है। बेहतर होगा कि आप सब इन सारी चीज़ों को यहीं छोड़ दें। हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने राजवंशी परिवार की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाया है और सिर्फ वही राजा बनने के लायक है, ये लड़का नहीं। पल्लवी ने समर्थ को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ये लड़का बोलने की? वो इस घर का बड़ा बेटा है। तुम इस घर के कुछ भी नहीं लगते। तुम्हारा ना हमसे कोई रिश्ता है और ना हमारे राजपरिवार से। अपना मुंह बंद रखो। समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ बिल्कुल, मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अभिमन्यु से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। आप लोगों को जो करना है करिए, लेकिन मासा और अर्पिता पर उंगली उठाए बिना करिए। और ये मत सोचिएगा कि आप लोग अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अभिमन्यु जब वापस आएगा तो आप लोग भी जानते हैं कि सब कुछ पल भर में बदल जाएगा। पल्लवी समर्थ की बात सुनकर थोड़ी घबरा गई और वो अभिनव की ओर देखने लगी। नरेंद्र गुस्से से तिलमिलाकर समर्थ के सामने आया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? अभिमन्यु वापस आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा तो मेरा अभिनव ही बनेगा। समर्थ ने नरेंद्र का हाथ अपने कॉलर से हटाया। अर्पिता दोनों की ओर देखते हुए बोली, चाचा जी, हम आपको अच्छा समझने की भूल करते आ रहे थे, लेकिन अब नहीं। ये मत सोचिएगा कि आप हमें इस तरह से बुरे भले शब्द बोलेंगे तो हम चुप हो जाएंगे। हरगिज नहीं। आपको जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन हम अपनी मासा और अपने भाईसा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इतना बोलकर अर्पिता वहां से जाने लगी। मासा, जो इतनी सारी चीजों को सोच रही थी, उन्होंने अभिनव की ओर देखा और वो उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी मासा का सिर चकराया और वो गिरने ही वाली थी कि समर्थ ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया। मासा, आप ठीक है ना? समर्थ को चिल्लाते सुनकर अर्पिता, जो अपने कमरे में नहीं गई थी, भागते हुए आई और मासा की ओर देखते हुए बोली, मासा, क्या हुआ आपको? समर्थ चिल्लाया, कोई डॉक्टर को फोन करो। वहीं खड़ी कियारा जल्दी से आगे आई और उसने डॉक्टर को फोन किया। समर्थ ने मासा को अपनी गोद में उठाया और उन्हें कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और मासा का चेकअप करने लगे। मासा बेहोश थी और उन्हें होश नहीं आया था। डॉक्टर देर से उनका चेकअप कर रहे थे। अर्पिता मासा के कमरे में परेशान खड़ी थी। समर्थ उसके बगल में आकर खड़ा हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्पिता, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मासा को कुछ नहीं होगा। अर्पिता ने नामी अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं समर्थ, आप और हम ये सब नहीं संभाल सकते। आप अभी समझ नहीं रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। आपने नहीं सुना चाचा सा ने क्या कहा है और मासा उसी वजह से बेहोश हुई है। अगर मासा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अर्पिता काफी परेशान हो रही थी। समर्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अर्पिता समर्थ की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। उसे परेशान देखकर समर्थ ने कहा, अगर आप ही इस तरह से परेशान होंगी तो फिर मासा को कौन देखेगा?
अभी अभिमन्यु यहाँ नहीं है तो आपको ही मासा का ख्याल रखना है। मेरी बात समझ रही है ना अर्पिता? अर्पिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो अपने कंधे की ओर देखने लगी। समर्थ ने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया। अर्पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं समर्थ, मुझे भाईसा से बात करनी होगी। उन्हें यहाँ आना होगा क्योंकि जब तक भाईसा यहाँ नहीं आएंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। सब कुछ हमारे हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है और हम ऐसा नहीं चाहते। समर्थ कुछ बोलने ही वाला था कि अर्पिता ने अपना मोबाइल फोन उठाया और अभिमन्यु से बात करने के लिए रूम से बाहर निकल गई। अभिमन्यु ने उसका नंबर देखकर कहा, अर्पिता हमें इस टाइम कॉल क्यों कर रही है? उसने फोन उठाया और कहा, अर्पिता क्या हुआ, आप ठीक है ना? अर्पिता ने कहा, भाईसा हम ठीक हैं लेकिन मासा ठीक नहीं है। अभिमन्यु ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ मासा को? अर्पिता ने किसी तरह अपना रोना कंट्रोल करते हुए बताया, भाईसा मासा की तबीयत खराब हो गई है और वो बेहोश हो गई है। अभिमन्यु ने परेशान होते हुए कहा, क्या, लेकिन ऐसे कैसे मासा बेहोश हो सकती है, क्या हुआ उन्हें? अर्पिता ने परेशान होते हुए कहा, भाईसा यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, आप नहीं जानते। चाचा साहब बेल पर रिहा हो गए हैं और वो वापस राजमहल आ गए हैं। इस बार तो वो जैसे बगावत पर ही उतर आए हैं। उन्होंने मासा से बड़ी ही बदतमीजी से बात की और उनके मन में जो कुछ भी आया वो सब कुछ मासा को कहा। इस वजह से शायद मासा ने कुछ ज्यादा ही टेंशन ले लिया और वो बेहोश हो गई। अभिमन्यु ने अर्पिता की पूरी बात सुनी और अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांध ली। अर्पिता ने कहा, भाई साहब आप हमारी बात सुन रहे हैं ना, हम क्या कह रहे हैं? अभिमन्यु ने बहुत ही आराम से कहा, हाँ हम समझ रहे हैं आपकी बात और हमें सब समझ में आ रहा है। इतना बोलकर अभिमन्यु चुप हो गया।
अर्पिता ने परेशान होते हुए कहा, तो फिर अब आप क्या सोच रहे हैं? आप जल्दी से यहाँ आ जाइए ना, हम मासा को नहीं संभाल पाएंगे, वो काफी ज्यादा परेशान है। प्लीज भाईसा जितनी जल्दी हो सके आप वापस राजमहल आ जाइए, अभिमन्यु ने अपने मन में कहा। इप्सिता को बिना सच बताए तो हम कहीं नहीं जाने वाले, अर्पिता ने इमोशनल होते हुए कहा। क्या सोच रहे हैं भाईसा, आप आएंगे ना यहाँ? अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और कहा, अर्पिता देखो हमारी बात तुम बहुत ध्यान से सुनो, हम अभी वापस उदयपुर नहीं आ सकते क्योंकि हम अभी यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो पूरा नहीं हुआ है और जब तक हमारा ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता हम वहाँ नहीं आ पाएंगे। आप परेशान मत होइए, आप वहाँ पर अकेली नहीं हैं, समर्थ है ना आपके साथ? अर्पिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनकर पीछे मुड़कर समर्थ की तरफ देखा जो वहीं मासा के कमरे में खड़ा था और डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था। अर्पिता ने उसे देखकर कहा, हाँ समर्थ है यहाँ पर, लेकिन भाईसा मासा आपका इंतजार कर रही हैं, अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो मासा जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं। अर्पिता को इस तरह जिद करते सुनकर अभिमन्यु ने कहा, अर्पिता अभी आप जिद मत करिए, हम अपना ये काम कंप्लीट किए बिना नहीं आएंगे, आप जानती हैं हमारे लिए प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, अब तो हम अपने मकसद को कामयाब करके ही वापस लौटेंगे और आप मासा की बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम उदयपुर के बेस्ट डॉक्टर को मासा की ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे, हम सब कुछ अरेंज कर देंगे और समर्थ को सब कुछ बता देंगे, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जब तक हम वहाँ नहीं आते आप बस मासा के साथ ही रहिए, उनका पूरा ख्याल रखिए और अपना भी।